पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत्यार्थ प्रकाश और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो इनके इस चित्र को देख आदमी कटका मर जाए। इसके ऊपर अकबोड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। और इस अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहां से छपा है? ये है सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण संवंत है, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के आगे इतनी लंबी फीत और फिर महर्षि दयानंद और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी लादी श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है और प्रकाशित है वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये छपी कहां से है? ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहां से छपी है। अब इसमें आपको सातवें समुल्लास में ले चलते हैं। ये है सप्तम समुल्लास यानी सातवां समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश है। पृष्ठ 154 पर इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का के निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता? जब क्योंकि पाप से पाप कर्म से दुख होता है और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, सतुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा? या स्वयं कह रहे उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से और पाप कटते नहीं। अपुण आत्माओं, ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है, फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञान हीन प्राणी ऐसी उवाबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपना आत्माओं, जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता। और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समुल्लास चल रहे हैं और 87 प्रकाश है ये, इसके 163 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, या और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते हैं नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को, जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता, अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा, तो वो सामने वाला वो नकली डॉक्टर वैद जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा, तो क्या वो डॉक्टर है, क्या वो वैद हो सकता है? वो तो कोई गुटी लाए बैठा है, नकली बोर्डदार है जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए, किस लिए क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या, जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है। और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा, साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है, इससे सिद्ध उसने लकड़ी के गुटके रखे सारे और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में उसमें कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दानंद सरस्वती का जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है, इसको कैख भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा है अपने हकर कमल से, और यजुर्वेद में क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा के गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है, और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा, ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवेदनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवेदनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवेदनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवेदनमसि, एनस्य एनस्य घोर एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवेदनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ, ये 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब यहां इसने मित्र शब्द प्रवेश प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहां लिख दिया मित्र तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवेदनम, एनस माने अपराध के, अवेदनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस माने अपराध के, अवेदनम माने विनाश करने वाले हो, पितर करते से पिता के की हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है, अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है, एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवेदनम माने नाश करने वाले, अवेदनम विनाश करने वाले हो, अवेदनम माने विनाश करने वाले हो, अनसह अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी अवैधन माने नाश करने आ रहे हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब अनसह माने अपराध के पाप के दुष्ट आचरण के नहीं पाप के आप अवेदन माने नाश करने वाले हो। अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहां परमात्मा ना लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुलास में भगवान के नामों की महिमा का की व्याख्या की है, विवरण दिया है, उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समुलास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस ये इसी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला नो सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते, इस सातवें समुल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्सर ज्ञान युक्त है और इनसे जिसा भी अनुवाद बना इन्होंने अनुवाद किया है, और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अष्टमा अध्याय और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र, इसके यहां पर यह अनुवाद किया स्वामी जी ने। तो यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, हम यहां लिखेंगे हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के एनएसए माने अपराध मानी यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अनसमान्य अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दानंद की या थूरी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है वा निराकार, ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है, ये देखिएगा ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र प्रथम ही सूक्त और इसका प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि जहां यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्म के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं, इत्यादि सत्पथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में आगे देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3, इसमें भी अग्नि अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और पांचवें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर सातवें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब आठवें अग्नि शब्द नहीं है, नौ में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहां से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक यति मंडल, ये इसका प्रकाशक है, मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा सत्यार प्रकाश, ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है, यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पर प्रश्न नंबर 17 पर प्रथम सर्वलास में जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह, इस महर्षि दानंद जी ने केवल डेढ़ वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो ढाई वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक साम वेद अनुवाद किया गया, ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं, ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश राणी अध्यक्ष दानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाषम ये प्रथम अध्याय है और इसके देखिए मंत्र। इसके प्रथम मंत्र में अग्ने माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्ने माने हे परमेश्वर और तीसरे मंत्र में अग्निम माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्ने माने हे ईश्वर और छठे मंत्र में अग्ने माने हे ईश्वर और सातवें मंत्र में अग्ने माने हे परमेश्वर, जहां भी अग्ने शब्द है, और आठवें में अग्ने माने हे ईश्वर और नौवें में अग्ने माने हे परमेश्वर, जहां भी दसवें में अग्ने माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझ कर इसकी रचना की है, सत्यार प्रकाश की। इसमें जो लिखा वो वेदों अनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं, परमात्मा सह शरीर है, ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दानंद इसका राइटर नहीं है, वेदों का केवल अनुवादक है, जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा पांचवें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है पांचवा अध्याय। इस पंचम अध्याय आरंभ है, इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। दो बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया, अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्ने माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताए युक अर्थ है इसका, सारी उम्र पढ़ दियो इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए, कहना कैसा है यहां पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। और वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णु यत्वा सोमस्य तनुरसी, तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर आपका शरीर है, असी माने है, तनु माने शरीर, ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है, अग्नि माने हम लिख जाएंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर स शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते यह लोक तरमावि से विवर्ती। अब ईश्वर है वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मो जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको दिखाते हैं, प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वहां इसने के बठा बठा रखे अनुवाद में, इस दयानंद जी ने देखिएगा, ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको, फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्रहवा असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने, पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया इसमें, अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है, ये दो हाईलाइट करके हैं, ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है, अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं है, अर्थ नहीं करा क्योंकि पोल खुलती दिखी थी, फिर आगे वो दो बार लिखा पाया इसने, करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें, प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सजनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व जीव गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूं, भगवान शर्म मारेगा पत्थरों का और काठ के मूसलों का, इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना, कोई बात ही बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूं भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर, अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असी यानी वो अतिथि रूप में यहां आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर। आगे देखना इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में, आए है कहते हैं चोर चुराव तोमड़ी वो गड्ढे पानी में वो गड्ढे व उपराव न सच्चाई छनी ना। यह देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद मैं सिद्धांत जी का अनुवाद क्या देखना छठे में पांचवें अध्याय का छठा मंत्र। जिसलिए अग्ने खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते यानी जगदीश्वर आप वह बिजली जो बिजली गए लड़ाई दी इसमें आप आपका बिजली परमेश्वर या बिजली दोनों लिख लिए बिजली भी सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं इसलिए उस आप वा बिजली के बिजली में मैं पूर्वोक्त वर्तों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं जो यह तव माने आपका आप और उसकी उसकी नहीं आप तव माने आपका तनु माने शरीर है इसने रांद काट दी विस्तृत व्याप्ति है आप तव माने आपका यह आपका तनु माने शरीर है वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है सो आप वह उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है इसमें 3 बार तनूर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों तुमको यह जो इस अग्नि बिजली रूप लिख दिया अग्नि माने परमेश्वर लिखना है परमेश्वर का अग्नि नहीं परमेश्वर का सोन आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों तुमको जो इस परमेश्वर का अग्नि का नहीं परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है शरीर या है लिखना चाहिए शरीर है और भयंकर वचन को नष्ट करता है उत्तम ता से सेवन किए हुए अन्न ये बकवास कर रखी है सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में स्थित होने लोकों में सोने वाला है यानी लोकों में सोना में अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हूं इसका इसने अनुवाद नहीं किया शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊ। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनूर तनु ये तनु है वरिष्ठा तनु वरिष्ठा 1 और मूल संस्कृत में यहीं पर है ये दूसरा तनु वरिष्ठा और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग 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 इसने केवल 2 बार लिखा तनु माने शरीर और तीसरी बार इसने शर्म आगी अनुवाद छोड़ दिया। 1.5 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजीटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा ये देखिएगा यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं ये देखिएगा ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद और इसका 39वां मंत्र 39 इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ इस दय को तय बनाते हैं ये इसका संधि छेद करते हैं जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य है नरवत माने मनुष्य के तुल मनुष्य के तुल परमात्मा है इंद्र हे भगवान जगदीश्वर जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं ऐसे ऐसे अब यहां लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो अच्छी प्रकार, सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त करते। इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना है कि परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दानव सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल, और ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 मैरि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल परमेश्वर, आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो, उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वतमन पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर, लिखना था अध्यक्ष लिख दिया, हे पवित्र अंगीर माने शरीर, शरीर धारण करने वाले विद्याओं से सर्वत्र व्यापक ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले, यहां देखो शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ रखी है इसने। अंगीरस वर्तमाने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए, उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने रख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं, इसका वास्तविक अर्थ तो ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं, उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और ये छपा कहां से? यहां से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा, इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है, ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं, इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव, इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं, हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे हैं उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जानबूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाणे में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए, 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कवि लिखा, कबीर लिखा, तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव, जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा ये महर्षि दान सरस्वती का अनुवाद है, ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है, यहां अगर दो अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा महर्षि दान सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 में सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये दान सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का 36वें अध्याय भाषा भाष्य है और ये है 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु लिखा है यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहां इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहां ठीक अनुवाद किया है, यहां लिखा है इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को, बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है और यदि यहां यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है ये। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में, अब हम ऋग्वेद में जहां परमात्मा कवि, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब, हम कबीर साहब कहें, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह को। ये देखिए ऋग्वेद अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में। ये वही है, यहां से ये छपा है, प्रकाशक है, अभी हम पढ़ रहे थे इसको, वही है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें, ये कबीर लिखा, कबीर अत्य, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, दो अपसर्ग लगा दिए, तो फिर भी यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहां लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव, ये कबीर साहब लिखना चाहता, कबीर परमेश्वर। तो यहां यहां केवल कबीर लिखा है, तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा है, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चलकर आता है। ये देखिएगा, अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, द्यूलोक के उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है, यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर द्यूलोक के यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे स्थान पर विराजमान है, एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1, 2, 3 में। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहां आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप अरुष माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला हरि माने पापों का हरण करने वाला, अर्युदानंद मठ कह रहा था जरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, वह है राजेव, राजा के समान। ये देखना हम 269 यानी 269 पे, और यहां पर लिखा कि राजेव, राजा के समान, इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं, 270 पर राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है, ये देखिएगा, दूसरे मंत्र में वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहां पर, कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो, आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आगे आगे आप पापों को दूर करके हे सोम हे अमर परमात्मा हम आप हमको सुख दें अपने आत्माओं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है, और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है उस, और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहेब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहेब जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले,